मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 22 नवंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही फ्रेंड्स विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च 2019 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं लाल बिहारी यादव, आपका गांव है धनबोर, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश, और आकांक्षा वालिया, आप हैं जगाधरी हरियाणा से। तो लाल बिहारी और आकांक्षा, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों मैं पहले कुछ सूचनाएं देना चाहूंगा और इनफैक्ट ये वे सूचनाएं हैं जो मैं अक्सर आप लोगों को फ्राइडे को देता था, लेकिन इस बार मुझे बृहस्पतिवार थर्सडे को ही ये सूचनाएं इसलिए देनी पड़ रही हैं क्योंकि आपको मालूम है कि कल गुरु नानक देव जी की जयंती है और इस अवसर पर गजेटेड हॉलीडे होता है, तो स्वाभाविक है कि कल डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आ पाएगा और सैटरडे संडे को तो आता ही नहीं है। इस तरीके से एक साथ 3 दिनों के लिए मैं आप लोगों के इस मुलाकात से वंचित रह जाऊंगा फ्रेंड्स, तो इसीलिए मुझे सूचनाएं आज ही देनी पड़ रही हैं और यह कि इन 3 दिनों तक डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल और परसों दोनों ही दिन आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी जैसे कि मिलती रही हैं। साथ ही आपको मालूम है कि सैटरडे को हम लोग आपको कुरुक्षेत्र और योजना के 4 आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं जिसमें 2 हिंदी के होते हैं, 2 इंग्लिश के होते हैं, वे भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। एक साप्ताहिक प्रश्न होता है, वीकली क्वेश्चन जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है वह भी आप लोगों को दिया जाएगा और जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। तो मित्रों ये कुछ सूचनाएं थी और आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग जो जल परिवहन पर मैंने आपको कुछ क्लिपिंग्स प्रोवाइड की थी और स्पेशली एक क्लिपिंग्स दैनिक भास्कर की 17 तारीख को दी थी और मैंने कहा था कि इस पर आप लोग पॉइंट्स नोट कीजिए, इसी के बारे में मैं कुछ आपसे बातें करूंगा जिसे आप कह सकते हैं कि नोट्स बनाने का अभ्यास, इस विषय पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और मॉडल इसी को बनाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले न्यूज आइए देख लेते हैं। इनफैक्ट सच पूछे तो कोई ऐसी महत्वपूर्ण खबर नहीं है, रेडियो में तो खबर नहीं है, दूरदर्शन पर भी खबर नहीं थी क्योंकि ये जो घटना घटित हुई है जो अखबारों में जिसे जगह मिली है वो उसके बाद हुई, यानी कि रात की घटना है। और घटना कुल मिलाकर यह है कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वह भंग कर दी गई है। अगर आपने डीडी न्यूज देखी हो तो डीडी न्यूज में यह खबर जरूर आ रही थी कि वहां की अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी है, इसी के साथ ही साथ वहां पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी जिसे पीडीपी आप कहते हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी थी जो उमर अब्दुल्ला जिसके अभी लीडर हैं, शेख अब्दुल्ला का नाम आपने सुना है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जो इससे पहले मुफ्ती मैडम रही हैं, जो इसके इससे पहले वहां की मुख्यमंत्री थी वो थी, तो ये सब अपने अपने ढंग से कोशिश कर रहे थे, ये न्यूज में थी और उसमें ये बताया जा रहा था कि इन इन पार्टियों ने मिलकर के अब सरकार बनाने का फैसला किया है और वो राज्यपाल से अब मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, ये खबर दूरदर्शन पर आ रही थी राइट। रेडियो में ऐसी कोई खबर नहीं थी और बट नेचुरल है कि फिर सुबह अखबारों में खबर है कि इस बीच में राज्यपाल ने वहां के विधानसभा को भंग कर दिया है। आपको मालूम होगा कि इससे पहले लगभग 2-2.5 महीने पहले वहां गठबंधन की ही सरकार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल थी, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने विड्रॉ कर लिया अपना सपोर्ट और वहां फिर राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन कह लीजिए, राज्यपाल शासन वहां लगा दिया गया राइट। अब सरकार जैसे ही बनने की स्थिति हो रही थी तो राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी, बट नेचुरल है कि अब चुनाव कराने होंगे। लेकिन यहां एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऐसा महसूस होता है कि डेफिनेटली वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे अब इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगी। कोर्ट में इसलिए ले जाएंगी कि आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी उत्तराखंड के मामले में भी जब कुछ इस तरह का ही तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन कुछ मामला लगभग विधानसभा को भंग करने की नौबत आई थी तो उसमें बहुत क्लियर कट ये डिसीजन दिया था न्यायालय ने कि किसी का बहुमत है या नहीं है इसका फैसला विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिए। श्रीलंका में भी अभी जो राजनीतिक संकट है वो आप देखिए कि उसमें भी वहां के न्यायालय ने यही बात कही है कि किसी के पास बहुमत है नहीं है, कोई सरकार बना सकता है कोई सरकार नहीं बना सकती है, इसका फैसला विधानसभा को करने दीजिए, कोई राजनेता न करे, चाहे वो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो। देखिए राष्ट्र के मामले में तो राष्ट्रपति करते हैं, राज्यों के मामले में राज्यपाल करते हैं। तो ये लगभग जो संसदीय प्रणाली वाले लोकतंत्र रहे हैं उनमें ये बात स्थापित हो चुकी है कि इसका फैसला विधानसभा को करने दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि इसमें भी कुछ इस तरह की बातें हों या क्या होता है, न्यायालय जाते हैं नहीं जाते हैं, जो भी स्थिति हो, तो लगता नहीं है कि इसे यूं ही राजनीतिक दल जो वहां के हैं जो दावा कर रहे थे सरकार बनाने का यूं ही जाने देंगे। तो मेरा कहना केवल यह है कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं आपको नई दुनिया का इसी से रिलेटेड एक एडिटोरियल कमेंट आज प्रोवाइड कर रहा हूं, उस कमेंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। उसमें उन्होंने एक एप्रिहेंशन दिया है कि दरअसल जो अनुच्छेद 35A है, ये 35A को लेकर के जो राजनीतिक दल पार्टी मिल करके और सरकार बनाने जा रहे थे वो 35A के समर्थक हैं, और 35A जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या या यूं कह लीजिए कि मेन स्ट्रीम में शामिल होने की एक बाधा सी इस मायने में बनी हुई है कि ये जो परिच्छेद है ये अधिकार देता है वहां की विधानसभा को कि जम्मू कश्मीर के कौन स्थायी नागरिक हैं उसका फैसला वो खुद करें। ये एक बहुत बड़ा अधिकार है वहां की विधानसभा के पास, लेकिन इसके संवैधानिकता को भी एक चुनौती दी जाती है, और वो चुनौती इस रूप में दी जाती है कि 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से इस तरह की बात कही गई थी, लेकिन जबकि यह संविधान संशोधन का हिस्सा होना चाहिए, तो संविधान संशोधन इसमें नहीं किया गया है, लेकिन जरूर उसमें 35A अनुच्छेद जोड़ा गया है। लेकिन जो 35A है ये 370 के साथ जोड़ा हुआ है। तो 35A को दो रूप में आप देखेंगे, एक तो A को आप कैपिटल फॉर्म में देखते हैं यानी कि बड़े A के रूप में, और दूसरा यह है कि वो छोटे A के रूप में। तो इस बात को लेकर के इसकी चर्चा इस एडिटोरियल कमेंट में है, तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न हो। फ्रेंड्स आइए अब हम लोग आज के मुख्य विषय पर आते हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको एक आइटम प्रोवाइड किया था, आर्टिकल प्रोवाइड किया था, देश में जलमार्गों के साथ ट्रांसपोर्ट ग्रिड का विकास आवश्यक, और मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि आप सब इस पर नोट्स तैयार करें, जिसको लेकर के आप सब बहुत परेशान रहते हैं और लगातार प्रश्न भी पूछते रहते हैं, सर नोट्स कैसे बनाए जाने चाहिए, और मैंने शायद उस समय कहा था कि इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि आप मेरी बातों को आगे सुने, अगर आपने नोट्स तैयार नहीं किए होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से तैयार कर लें, तभी आप अपना सही मूल्यांकन कर पाएंगे। देखिए सुनने सुनने से बात नहीं बनेगी, तो आप पहले नोट्स तैयार कर लें, इसके बाद मुझे फिर से सुनना शुरू करें, और अगर आपने तैयार कर ही लिए हैं तो बेहतर है कि फिर आप सुने, और ये जो आर्टिकल है इसे आप अपने पास रखें भी, और मेरी बातों से आप अपने नोट्स को मिलाएं और देखें कि कितनी चीजें आप में छूट गई हैं, क्यों छूट गई हैं, उनके बारे में सोचें और फिर अपना एक रास्ता तैयार करें, तब धीरे धीरे सही नोट्स बनाने की आपको प्रैक्टिस होगी। राइट, तो इतना काम आपको इससे पहले कि आप मुझे सुने कर लेना चाहिए, आपकी इतनी तैयारी हो चुकी हो। तो मित्रों अब आप देखिए कि ये बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही कंप्लीट है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अपने आप में एकदम ही पूरा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक पर मैं समझता हूं कि लगभग 3/4 जानकारी ये छोटा सा आर्टिकल दे देता है, और यही सिविल सर्विस की तैयारी की खूबसूरती भी होती है। आपको जल परिवहन पर कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप 20-30 पेज के कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, किताबों का कोई अध्याय पढ़ रहे हैं, नॉट एट ऑल, यही अपने आप में सफिशियंट है। जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो देखिए इसके क्या पॉइंट्स बनते हैं और कैसे उनमें आप फिर सब पॉइंट्स बनाते चले जाएंगे, यानी कि मेन हेडिंग्स और इसके बाद उसके इसके पॉइंट्स, इसे आप ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आप ये कह लीजिए, अभी हमारा जो पहला टर्मिनल बना है, इस टर्मिनल के बारे में कुछ चीजें नोट कर लीजिए एक रेफरेंस के तौर पर, क्योंकि यही वह घटना है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह टॉपिक इस साल के सिविल सर्विस, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर जो सिविल सर्विस मेंस होगा उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम पहले इसको नोट कर लेंगे कि ये जो अभी बना है ये गंगा नदी पर बना है, वाराणसी के रामनगर पर बना है और ये हमारा पहला अंतरदेशीय जल मार्ग टर्मिनल है। इतना हमने पहले पॉइंट में नोट कर लिया। इसके बाद हमने नोट कर लिया कि यह वाराणसी से हल्दिया के बीच का रास्ता है, हल्दिया जो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और फिर हम ये भी नोट कर लेंगे, इसी के पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट यानी कि जिस टर्मिनल का अभी उद्घाटन हुआ है, राइट। इसके बाद फिर हम इसी में ही नोट कर लेंगे कि ये हल्दिया से फिर नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार आदि की तरफ जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें जोड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें यह भी जोड़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि इससे हर महीने, एक महीने में सोचिए 1,00,000 टन माल की ढुलाई होगी, एक महीने में 1,00,000 टन माल की ढुलाई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद फिर इसी का एक और पॉइंट होगा कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे लगभग 1,60,000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, 1,60,000, तो रोजगार की समस्या भी आप देखिए कितना बड़ा हल हो रहा है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आपको सेकेंड पॉइंट में ये देखना है कि अगर हम जल मार्ग का विकास करते हैं तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सिविल सर्विस में इसी तरह के क्वेश्चन आखिरी में जोड़ दिए जाते हैं, है ना। तो जब आप जल मार्ग का विकास करेंगे तो फिर आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि इससे ये जो जलमार्ग होगा इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये ढुलाई के मामले में बहुत सस्ता होता है। ढुलाई के लिए हमारे पास दूसरे साधन क्या है, आप एयर को तो छोड़ दीजिए, तो बहुत महंगा है, रेल और सड़क। तो रेल और सड़क की तुलना में ये बहुत सस्ता है, तो आप देखिए कि इससे किस तरह से कंज्यूमर को फायदा होगा, उनको सस्ती चीजें मिल पाएंगी। दूसरा यह है कि इसके जो स्टीमर वगैरह होते हैं, जहाज जिसे हम जहाज कहते हैं, वो रख रखाव की ज्यादा मांग नहीं करते, उस पर ज्यादा खर्च नहीं होता, मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा नहीं होते, वो भी हमें सस्ता पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि सड़क का कितना मेंटेनेंस होता है, रेलवे का कितना मेंटेनेंस होता है, इसमें मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, तो उस रूप में भी ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। ये बहुत लंबे समय तक चलता भी है, सड़कें उखड़ती रहेंगी और सब कुछ होता रहेगा, ये बहुत लंबे समय तक पानी में तो कुछ होना नहीं है, तो अधिक टिकाऊ भी होता है, बहुत किफायती होता है, कम खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा कम लगती है। देखिए सड़क पर तो घर्षण होगा, रेल में भी वही है, पानी पर तो घर्षण नहीं होता ना, तो पानी में बहुत कम एनर्जी से जहाज चल सकते हैं और एक बार में कितना वजन ले जाते हैं कल्पना कीजिए, स्टीमर वगैरह आप देखेंगे तो ऊर्जा भी कम लगती है, सस्ता भी होता है, टिकाऊ भी होता है, और चूंकि ऊर्जा कम लग रही है तो बट नेचुरली कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो रहा है। सड़कें बनाने के लिए आपको पेड़ काटने पड़ सकते हैं, इसके लिए तो आपको कोई पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। ये जो मैं बीच बीच में कुछ चीजें बोल रहा हूं ये अपनी तरफ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे पेड़ काटने नहीं पड़ेंगे ये सब चीजें यहां नहीं है, लेकिन पॉइंट्स हैं। तो उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये ताकत तो आप में होनी चाहिए। कोई आपको भूमि अधिग्रहण नहीं करना पड़ेगा, साथ ही साथ सड़कों पे कितने दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं से भी हम बच जाएंगे, तो ये कुछ इसके फायदे हैं, राइट। लेकिन हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारी सीमाएं भी हैं, क्योंकि हम अभी केवल 1% ही अपनी पूरी ढुलाई का जल के रास्ते से कर पा रहे हैं। तो हमने अभी तक अब किया क्यों नहीं, इसलिए नहीं किया कर पाए क्योंकि उस हमारी कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी सीमा तो देखिए यही है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, इनको डेवलप करने के लिए जो धन चाहिए वो धन हमारे पास नहीं है, और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। अब सरकार ने सोचना शुरू किया है, दूसरा यह है कि जो हमारी नदियां हैं, देखिए इसी में बकायदे दिया है कि हमारी जो नदियां हैं और जो नहर हैं, नहरों की बात इसमें कही है कि उसकी चौड़ाई कम है, नहरों की चौड़ाई कम होने से उसमें स्टीमर आ जा नहीं सकते। तो कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। और नदियों पर, नदियों में नौकाओं की दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। ये कुछ पॉइंट्स मित्रों इसमें दिए हुए हैं, लेकिन आपको इससे पहले भी मैंने एक आर्टिकल प्रोवाइड किया है, राइट। अब आप देखिए कि होता क्या है कि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो बस यही मेहनत काम आती है। उसमें से आप कुछ पॉइंट्स लेंगे तो बकायदे कुछ और आपको सीमाएं उसमें मिल जाएंगी। जैसे उसमें मुझे ध्यान आ रहा है कि एक सीमा यह थी कि नदियों में हमारे गाद बहुत जल्दी भर जाती है, गाद भरने के कारण नदियों की गहराई कम हो जाती है, ये एक संकट है, तो हमें नदियों की सफाई करते रहना पड़ेगी। दूसरा है कि जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, चूंकि वो बरसाती नदियां हैं, गर्मी के दिनों में सूख सी जाती हैं, तो वो एक बहुत बड़ी कमी हो जाती है, उसकी सीमाएं बन जाती हैं कि उसमें पानी का अभाव है तो आप कैसे स्टीमर चलाएंगे या छोटे स्टीमर चलाएंगे। तो दो तीन पॉइंट्स आपको वहां बकायदे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारी अपनी ये सीमाएं हो गई। अब इसी में आपको कुछ दूसरे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें आप किसी हेडिंग में नहीं रख सकते, तो उन्हें आप अन्य में डाल दीजिए। उदाहरण के तौर पर इसी आर्टिकल में देखिए कि कुछ बहुत अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं। एक फैक्ट्स यह कि राकेश मोहन कमेटी ने 2014 में जलमार्ग विकसित करने के लिए एक सुझाव दिया था कि ग्रिड बनाया जाए, तीनों को जोड़ दिया जाए, सड़क, जल, हवाई और रेल, चारों को जोड़ दिया जाए, इन चारों को जोड़ करके ग्रिड बना दिया जाए। तो एक सजेशन के रूप में आप रिफरेंस देकर के यह बात कह सकते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, आपने वाकई में इस विषय की तैयारी की है। भारत का जो लक्ष्य है वो 15% ढुलाई जल मार्गों से करने का लक्ष्य है, ये आपको एक रेफरेंस पता लग गया। इसके बाद देखिए कि 111 नदियों पर बकायदे इस 15% को हासिल करने के लिए काम भी हो रहा है, ये भी आपके इस आर्टिकल में है, 111 नदियों पर बकायदे काम चल रहा है। इस तरीके से आपका ये नोट्स तैयार हो जाता है मित्रों। तो ये नोट्स बनाने के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा अभ्यास कराया है। अब मैं एक प्रश्न करता हूं कि भारत में जल परिवहन उतना अधिक विकसित नहीं हो पाया है, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए, राइट। एक बहुत ही सिंपल सा है, इसका उत्तर आपको इससे मिल जाएगा। क्या कारण है कि यूरोप इस मायने में भारत से बहुत आगे है, एक सिंपल सा मैंने उसमें पुछल्ला जोड़ दिया। अब इस आर्टिकल में यूरोप में क्यों जल परिवहन बहुत आगे है कुछ नहीं दिया हुआ है, राइट। अब आप बताइए कि ये क्यों आगे है, ये आपको अपने दिमाग से पैदा करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने कहीं पढ़ा हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब यहां मैं सूत्र के तौर पर अपने स्टूडेंट्स को एक कह लीजिए कि धागा पकड़ाना चाहूंगा फार्मूले के तौर पर, और खासकर अभी के बैच के जो स्टूडेंट हैं। मित्रों, इसका उत्तर हम ज्योग्राफी के आधार पर दे पाएंगे, इकोनॉमिक्स के आधार पर नहीं। और ज्योग्राफी के आधार पर आप केवल याद करने की कोशिश कीजिए, जब मैं पूरी दुनिया के बारे में बेस उसका बता रहा था कि पूरी दुनिया में जो वनस्पतियां हैं, तापमान है, वर्षा है, उसका बेस क्या है, तो आप केवल याद करने की कोशिश कीजिए कि जो यूरोप महाद्वीप है वो किस रीजन में है, किस क्षेत्र में है। और यदि वह यूरोप उस क्षेत्र में है तो आप कोशिश कीजिए यह जानने की कि उस क्षेत्र में होने के कारण यूरोप महाद्वीप को जल परिवहन की दृष्टि से क्या क्या अतिरिक्त लाभ मिल रहे होंगे। बस वो आप दो तीन पॉइंट्स नोट कर लीजिए और लिखाइए, इसी कारण से यूरोप इस मायने में काफी विकसित हो चुका है, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। मित्रों, यह है सिविल सर्विस की तैयारी करने का वह तरीका जो मुझे उपयुक्त जान पड़ता है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, प्रिया मिश्रा शहडोल मध्य प्रदेश से, केशव प्रसाद सिंह, सुबोध कुमार सिंह बक्सर बिहार से, नीलकांत भट्ट, ज्योति सिंह सतना मध्य प्रदेश से, शिल्पी रानी, अंकित यादव मुरादाबाद से, रवि राज बेगूसराय बिहार से, पीयूष कुमार सिंह छपरा बिहार से और शुभम कुमार सिंह, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। 3 दिनों के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। ये 3 दिन आपके बड़े सुखद तरीके से व्यतीत हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मेरा आप अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।